उसका टूट गया सत्र। पतिव्रता के अंग को कोई नहीं देख सकता, तो ठीक सा भाई। तीनों चाल पड़े मजबूर होकर, एक साधु का रूप बना ऋषि का, तीनों नारे नारे और इकट्ठे पहुंच गए। कहने लगे अनसुईया कहां जी आओ महाराज जी, बड़े दर्शन दिया तक बड़े भाग मेरे के घर पर संत आ गए मेरे द्वार पे के भिक्षा दो। कहा जी लो अभी ला, ऐसे नहीं दूध पियेंगे, दूध पी लो महाराज जी जब के बात होगी, दूध पिलाती हूँ, ऐसे नहीं पीवेंगे जब गिलास भर कर ले आई। अकोर के निवस्त्र होकर पिला नगन होकर, जानगी की तुम रॉन्ग नंबर पकड़ रहे हो, रॉन्ग स्टेशन पर बोलने लागे। अच्छा ले निवस्त्र पाऊंगी बेटा आ जाओ, तुमने तीनवा के बालक बना दिए छह छह महीने के, और जाके कमरे में काट गए कपड़े चमचा तो गेरे दूध उनके पालने में दिए लोटा। अब पार्वती ने देखा लक्ष्मी ने कित गई वाह कोई ना बड़े दिन ला दिए, उन्हें चिंता हुई नारद जी भेजे ढूंढ के ला के कारण बन गया वो नहीं आ रहे। नारद जी ने देखा जाके तीनों गुठिया की आंगली दे रहे मुंह में उड़ा लोट रहे पालने में बालक बनकर। ये तीनों मालिक जिसको तुम पूर्ण परमात्मा कहते हो, ये शास्त्रों से बता रहा हूँ, बाहर की एक भी बात नहीं से, ना तो कोई ना जचे थारे सर फोड़ दो, सच्चाई इतनी कड़वी है या बंदी छोड़ के। तो नारद जी ने आगे बताया कि वो तो बात बिगड़ी है, तीनों बालक बना रखे हैं उन्हें लौट रहे पालने में ठाट से लेटे हुए। बड़ा नारद जी क्यों कर पार पड़े, अख हाथ जोड़ो पा पकड़ो सन अनसुईया के, और वाह बक्सा जो बात बने। अब तीनों आई हाथ जोड़े, अक अनसुईया हमने तो आपके साथ नाजायज कर दिया, हमने माफ कर दो और इनको वैसे ही बना दो, अगले जाओ अपने शेरा ने। वो तीनों बना दिए ब्रह्मा विष्णु महेश, ये थारे शेर थे ले जा अपने ने। फिर कहते हैं उनका उसका पति आ जाता है वो ऋषि, तो वो कहने लगा महाराज जी बड़े दर्शन दिए। वो तीनों बोले मांगो भाई के मांगे, हम तेरे बड़े प्रसन्न है और तेरी पत्नी बहुत सती है। ने बोला जी मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, तीनवा जैसा एक ही स्वभाव में, तीनवा जैसा एक ही पुत्र हो, एक तो तीनवा जैसा हो। बोला तथास्तु। तो दत्तात्रेय का उत्पन्न हुआ अनुसुईया के, दत्तात्रेय भगवान जिसके तीन मुंह थे, एक ब्रह्मा के साथ विष्णु के साथ शिव के साथ, और उस दत्तात्रेय की भी मुक्ति नाम बिना कोई ना हुई, गुरु के बिना नहीं चाला काम। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और 25वां गुरु कबीर ये जोगजीत जी मिले उसको, उस जोगजीत तो पंडा छूटे 24 साल का, तो वैसे ही उसने कोई बुगला देख लिया कोई फलाना देख लिया, ये कोई गुरु थोड़े थे, गुरु तो उसने 25वां मिला जो कि जोगजीत थे, वो सतपुरुष थे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। ये तीन लोग का नाम भी ये काट बीमारी ने, तीन लोग ताई की मुक्ति यही देते हैं इसी की नहीं के नाम से, सतगुरु जो नाम बख्शते जब दत्तात्रेय की मुक्ति। अब ये बता भाई, अब ये समर्थ थे तो बालक बना दिए, समर्थ ने बना सका कोई बालक ला बना कबीर साहब का बालक, देखो गरीबदास जी को किसने क्या किया, 120 साल रह के गए और वो अनोनी कर गया जो कोई कर नहीं सकता। इतिहासों से शास्त्रों से ही जानकारी होती है और उसी से आधार पर हमने इनको भगवान माना, तो ये भी शास्त्र है कि अनसुईया ने तीनों ब्रह्मा विष्णु में इसके बालक बना दिए। तो यहां कह रहे हैं कि वेद पुराण पुराण बनाकर और ओछा कथ दिया ज्ञान तने, वेद और कुरान ये मुसलमान भाइयों ने ऐसे ही चार कतेब, इन चारों वेदों के आधार पर उन्होंने अपनी न्यारी बना रखी है भाषा बन करके। बात वही है, वो भी निराकार मानते हैं भगवान को अल्लाह को, चारों कतेबों का सार है कि वो ईश्वर बेचून है, बेचून का मतलब जो निराकार शक्ति जो दिखे को ना, इसी प्रकार वेदों का सार है कि ईश्वर निराकार है और वो ज्योत निरंजन है, बस वो भी ज्योत निरंजन तक की साधना करते हैं, ये भी ज्योत निरंजन तक की करते हैं, वहीं जाकर दोनों की भक्ति का समापन होता है। वेद कुरान पुराण बनाए ओछा कथ दिया ज्ञान तने, यानी अपने तक ही ज्ञान दे दिया, अपनी ही सीमित रख लिया, और सूक्ष्म वेद का भेद छुपा कर गलती करी महान तने, ये सूक्ष्म वेद बता रहा हूं मैं आपको, ये पांचवा वेद की जानकारी दे रहा हूं जो कि जिसमें चारों वेद भी ये पुराण भी आगे और साथ में सतलोक की जानकारी, ये सूक्ष्म वेद था, उस परमात्मा को काल ने बुला दिया। वेद कतेब निराकार बतावें, वेद और कतेब चार कतेब हैं मुसलमान भाइयों की और हिंदू भाइयों के चार वेद हैं। ये हिंदुओं के वेद नहीं है वैसे देखा जाता। वेद तो वैसे जब सृष्टि शुरू ही तब के हैं, ये किसी जाति या मजहब के नहीं है। ये जितने भी जिनको आज हिंदुओं की मोर लादी शास्त्र पर हिंदू शास्त्र कहते हैं, ये हिंदुओं के नहीं है। ये तो जब कथे गए थे जबकि कोई मजहब था को ना, ये तो प्राणी मात्र के लिए और सबके लिए मान्य होने चाहिए ये शास्त्र। जितना भी इनमें ज्ञान है ये गलत नहीं है, लेकिन ये ज्ञान गलत क्यों माना गया? क्योंकि सतलोक का ज्ञान कोई ना, सतपुरुष की बेरा कोई ना, और जब तक वो बेरा नहीं होगा इतना ये ज्ञान इनकम्प्लीट है, अधूरा है, ये सुलझता कोई ना। अब सुलझ गया कति, अब संशय एक नए पैसे का बिना रहे। अब शिव पुराण पढ़े तो विष्णु में संशय हो जाए, विष्णु पुराण पढ़े तो ब्रह्माणी में संशय हो जाती है। वो उसको बराबर बता रहा है, उसको बड़ा बता रहा है। वेद पुराण कुरान बनाए ओछा, वेद कतेब निराकार बतावे साकार कहे पुराण तने। अब हमारे शास्त्र हैं प्राणी मात्र के, वेद और कतेब तो उसने निराकार माने और पुराणों में उनकी साकार शक्ति का वर्णन दे रखा उन्हीं परमात्माओं का। क्योंकि देवी बताती है भागवत में, देवी भागवत में कि मेरा और सनातन परमात्मा का अर्थात दो हो गए, वो ब्रह्म कहो सनातन भगवान कहो, ये निरंजन है, काल है। अब इसकी जो बुंडी संज्ञा दें तो काल है और भगवान की संज्ञा दें तो ये निरंजन है। और बुंडी भी के है कि लोग एक एक, एक लाख जीव रोज खाओ, फिर इसने महाराज ने काल भी इनको बिल्कुल ठीक कहा है। और ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं गीता जी में कि मैं महाकाल हूं और इसलिए सारे लोगों ने खत्म करूंगा, इसलिए प्रकट हुआ हूं। तो बता कबीर साहब ने गलत कैसे कह दिया? स्वयं स्वीकार करने लग रहा निरंजन के मैं स्वयं काल हूं और सब न मारू खाऊं और फिर पैदा कर दूं। तपत शिला पे अपनी महिमा आप पे गाई और जीव कहूं भगवान तने। गरीबदास जी कहते मुल्ला माया मग में बैठी अंसा चुन चुन खाई और ज्योत स्वरूपी बह निरंजन मैं करता भाई। मैं भगवान सो यू नो कह मेरे जैसा सह को नहीं। तपत शिला पे बुन का खावे जीव किए गणे काल तने। ओए होए आड़ तो दुख का पाड़ है इस जीव का ऊपर है, और जब यहाँ से इस तपस्या का ऊपर इसका सूक्ष्म शरीर पटकिया जाता है, वहां देखे इसकी हालत। और उसके बाद ये 84 का चक्कर धर्मराज का जो का लेखा वो न्यारा से, ये तो न्यारा संकट है हमारे ऊपर जो तपस्या के ऊपर और भुना जाता है अपने स्वार्थ की खातिर। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए और तप करवा कर राज दे दिया, फिर लख 84 में ठोक दिए। आप लोग देखते हैं हम इसी चीज से प्रभावी हो जाते हैं, क्या करते हैं हम देखें कोई पड़ोस गांव में बाहर बैठकर कोई तपस्या करते हैं नादान लोग, और उनको तपस्वी महात्मा की संज्ञा हम देते हैं। क्या हुआ? ये तो कितना तपस्या करते हैं? 3 घंटे और 41 दिन। 41 दिन में 3-3 घंटे तपस्या करते हैं, और जेठ के महीने में शिखर दोपहरी 11 से 1 बजे ताई। हमारे गांव में हमने देखा एक फिल्म बनवाई एक महात्मा की जो तपस्या कर रहा था। अब उसके लक्षण देखा कर जाना सी आवे आदमी तो निडक के। उस फिल्म में आपको दिखाऊंगा कभी समय मिला। फिल्म बनवाई हमने के भी देखे वो प्रक्रिया क्या करते हैं, क्योंकि हमने नजदीक से नहीं देखा था वो तपस्या क्या करते हैं। इतना मेरे पास समय नहीं था कि मैं वहां 2-3 घंटे निकालूं, तो हमने एक पिक्चर बनवा ली, तो वो फिल्म उसकी बनाई गई। अब उसमें क्या करता है, वो 5 दोने लगा रखे हैं और बीच में बैठता है, 5 दोनों को उसके स्थान से कोई 5-5 फुट की दूरी पर रखता है, 6-6 फुट की दूरी पर 5 दोने लगाता है। और पहले दिन जैसे 5 उपले उनकी राख होगी, वो राख वहीं रहेगी। अगले दिन 1 बढ़ा दिया 2 बढ़ा दिया ऐसे बढ़ाता जाता। उस दिन जब हमने वो फिल्म ली वो लगभग उसका मेरे ख्याल में 25वां दिन था, 25वां दिन होगा। अच्छे ऊंचे ऊंचे हो रहे वही थे इतने, उन्हीं के ऊपर और फिर राख रख दिए जाते हैं 40। जैसे 30 हो गया था 30, 31 हो गए, 31 ऐसे रखते जाते हैं, वो 30-30 गो से चारों तरफ उपले रख दिए और उनको सलगा दिया जाता है और वो खूब जलते हैं, खूब जल के और जब धुआं उठना बंद हो जाता है लोगों की दृष्टि में तो आग तो अब बनी है सही इसकी। वो क्या करता है कि एक बाल्टी में और वो राख धोने की राख इकट्ठी कर रखी होती है नारी, उस बाल्टी में उसकी गारा सी बना ले है, पतली पतली ले इसी, और पहले तो सारे मुंह पैक है, सारे काना पैक है, माथे पैक है, सिर पैक है, बालू सा बन जाता है, कति लीप कर देता है जैसे प्लस्टर मड प्लस्टर होता है ऐसे मिट्टी की ले की तरह खूब नोचो डाले से, और फिर वो सिर पर इतने बड़े बड़े बाल उसके, उन बालों को उस बाल्टी में बेवे कति गच कर ले नो ताजा और खूब उसमें वो गारा और वो राख कति मिला ले और फिर उसको थोड़ा थोड़ा निचोड़ कर और बनाकर उसकी गिंडी ही राड़ा सिर पर रख लेता है और जब बैठता है उन दोनों में, जब वो आग धुआं छोड़ना बंद कर देती है, एक घंटे तक तो उसके ऊपर की लगी हुई वो राख थी वो उस आंच को प्रवेश नहीं करने दे, क्यों गिल्ली राख लाग रही और राख का एक ऐसा स्वभाव होता है ये अग्नि को आगे नहीं जाने देती। हमारी माता बूढ़ी माई दादी क्या करा करती, खेत में जाती, दूध थोड़ा होता ना जिस दिन, उस दिन एक मट्टी का उसका राख का ले और ला जाया करती उसी आंडी के और उतने को उसे लागत दर्जन थी, वो उतना ही रिस्ट्रिक्ट करता उस आंच को और उस दूध को सुचारू रूप से पका कर रखे पानता। अब वो बड़ी मुश्किल से आग को आगे जाने देता, धीमी धीमी बड़ी प्रॉपर सी सेदन जोगी को ना हो ऐसे, तो उसने न्यू या ले रहा ला रखी चौकर दे के एक घंटे के बाद आध पौन घंटे पाछ है वो जो राख होती है ना गोस्या के ऊपर की उपलिया के ऊपर के जो जल चुके हैं सुलग, वो अपने आप राख ही उस आग को बंद कर देती है जो उपलिया तो आ रही थी। अब इस समझोगे जो बात बनेगी, ये नादान लोगों को कैसे गुमराह करें बैठे बोली बाली आत्माओं का, तो वो मतलब 60% लेस हो जाती है आंच उन गोस्यों की उपलों की जो धोने ला रखे आध घंटे के बाद, और फिर क्योंकि ऊपर की धूप भी हवा जेठ की और चारों तरफ हुआ थोड़ी थोड़ी धंध के वो राख भी उसकी आंच भी आ रही है, तो फिर क्या करता है जैसे कमर में उसने लागी ना गरम गरम होन, तो उस कमर में उन बाड़ों को खोलता है अपने को, बॉडी बूझ बना रहा सारी दुनिया ने, वो बाड़ खोले यानी और उनको उन्हों कमर पर कर लिया, अब नो लाके उड़ा क्यों नीचे तक जहां तगड़ी ताई वो इतने लंबे है और उनको ऐसे ही लावे अजवा गारा गेच वाली ना वो ऊपर ले लाग रहा था क्यों पहले भी चिपका रखी और फिर उसमें वो पानी समावेश उसने वाकत ही गिल्ली फेर कर दी, फिर इस पास सुमनियों पे टिक लिया, फिर इस पास इस साइड में, फिर आगे नो कर लिया, ऐसे करता है इतने में ये 3 घंटे पूरे हो जा और फिर सुलपे पाड़े बैठ गए। यो साधना इनकी, ये तो नकली तपस्वी जो की कति सीधे नरक में जाना है, न को रोकनिया कोई ना, इनके ऊपर आधारित है। और गरीबदास महाराज कबीर साहब कहते हैं जिन्होंने 22-22 लाख वर्ष तप किया, 11-11 अरब वर्ष तक तप किया और जिन्होंने सारी उम्र तप में खो दी वो भी गधे की जुनी में गए। ये तीन में 41 दिन बैठनी है और वो भी 3 घंटे, इनको तो नरक में कितना ऐसा गंदा स्थान मिलेगा जो ठिकाना भी कोई ना उडंग का। एक बार महाराज ने बताया कि प्रियव्रत नाम का एक व्यक्ति था, उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया। अब यहां पर क्योंकि हमारी बुद्धि संकीर्ण होगी ये बात स्वीकार ना करें कि 11 अरब वर्ष तप का मतलब क्या है, कैसे हो सकता है, अब इसको ये भूल जाना क्योंकि हम प्रत्यक्ष को मानते हैं बीते हुए को नहीं मानते, ये हमारे बस बुद्धि की बात नहीं है, क्यों आज ये ऐसी व्यवस्था है नहीं। कहते हैं हमने स्वयं देखे वो बूढ़े व्यक्ति जो कहते थे कि 5.5 मन वजन को और ऐसे टोकरी में डाल के और छत पर माटी डाल दिया करता था ये व्यक्ति, और वो हमने देखा हमारे गांव में उनकी खुराक देखा किलो घी पी जा, आपको 100 ग्राम पी के दिखा दोगी जतड़ के दस्त नहीं लाग जा, ब्लड प्रेशर नहीं हो जाते, ये क्यूकर मान किलो घी पी जाता था वो और 5 मन, आज 3 दिने मिलकर ठाके दिखा दो 5 मिनट ना मार जाएंगे, रात से 50 वर्ष पाछे तो मेरे ख्याल में कोई नो कह देगा ना 40 किलो वजन ने ठा लिया करते ये भी स्वीकार्य नहीं होगा। अर्थात इस बात को तो आप भूल जाओ, क्या ये हो सकता ना हो सकता, पर इतना मान लो उसने गणेश दंता ही तप किया और काफी वर्ष तक तप करके वो धर्मराज के पास पहुंचा। उसने उसको राजा बना दिया, पृथ्वी का पृथ्वीपति बना दिया, चक्रवर्ती राजा, खूब मौज मारी। और फिर कहते हैं आए ना पारखद लेने की खातर, अब चलो प्रियव्रत तुम धर्मराज ने याद कियो, वो जो कह भाई मैंने एक सांस और ले लेंगे। 11 अरब वर्ष तक राज करके भी इच्छा मिटी नहीं। अब बताओ, ये महाराज कहते हैं इच्छा दासी जम की, जम कहे काल की, या काल की दासी है, इसने ठेका ले रखा इच्छा ने इनको गधे और कुत्ते बनाने का। इच्छा दासी जम की या खड़ी रहे दरबार, और पाप पुण्य दो वीर है या सतखस मीनार। इच्छा इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है, या खत्म नहीं होती, बढ़े उम्र तो घटे से और इच्छा बढ़े से बुढ़ापे में, कुदरती उल्टा उल्टा सिस्टम सारा यहाँ का। कहते हैं रनर धोखा धोखा लुट गया आगी अंतगढ़ी, आया बुढ़ापा बैरी और पड़ी परिवार में ममता गैरी, और पोता ब्यालो मन में रहरी एक ली करवा दो खड़ी, जो कड़ो ती जुगाड़ जोड़ रहा बुढ़ा के एक पोता ब्याह दो बस, ये बालक ब्याह को नहीं छे क्या, पोते ब्याह पाछे की हो जाएगा, बताओ अपना भजन में ध्यान लगा। अरे कहे एक हेली और पढ़वा दो, छोरे के नाम की कोई न रह रिक दे पाछे दुखी हो जाए, इतना गधा बनकर कुत्ता बनकर उसे लिए मारेगा थोड़ी दिन पाछे। तो यहाँ ये इच्छा है इस जीव की सबसे हानिकारक है। बच्चे ब्याह दिए संस्कार फलेंगे, कोई न सोचा हम खिलाते उड़ जाएंगे। राजा जनक बहुत पहुंचे हुए संत भी थे और सैनिक राजा भी थे, उसकी लड़की पर आपत्ति आई सीता पे, न्यो भी ना पूछा मरा सक जीव ऐसे, वो ज्ञानी थे, उनको मालूम था हमने दुख है दुख पाना है, कर कुछ नहीं सकते, उनके कर्म को हम नहीं बटा सकते, हमारा फर्ज पूरा हो चुका है, अब उसके संस्कार फलेंगे। ना तो सेना भी ले जा सकता था, अपनी बेटी के खातिर गेला दुख सुख में नहीं जा सकता था, क्या उसने बेरा नहीं था, नहीं गया, वो ज्ञान होता था कि हम के डालड़ा देंगे, उड़ा सारे बैठ कर रो सका उसके दौरे और कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार तो उसको फिर नोबला जी फिर राजा बना दिया और ऊपर ले गए, ऊपर ले नोबला, खबरदार जब तने सांस लिया है तेरे ताई एक सांस लेने का हुक्म नहीं है, और आगे दर ले गए। धर्मराज बोला चल भाई इसका काला मुंह करो, उन्होंने कहा जी काला मुंह क्यों कीजिए, है कि भक्ति के लिए भेजा था, भक्ति करी को ना डले डोन लग गया, वहां तपस्या तो करता रहा, अरे तो चल गधा बने और 84 भोग। उन्होंने कहा जी माफ कर दो, माफ तो करूंगा पर 84 भोगे पाछे करूंगा। अब यहां बात सोचने की है, बंदी छोड़ कहते हैं कि ऋषि मुनि सब करें तपस्या, ए भगवान हमें मोक्ष दिए और तप करवा कर राज दे दिया और 84 में ठोक दिए, ये इस काल का नियम है। और तपस्या करे उसके लिए भी संस्कार दे, जैसे इंद्र जी को ये कह रखा कि भाई देख तेरी पदवी है बेहतर चौकड़ी युग तक, तू राज करेगा स्वर्ग का राजा बनेगा, और इसके बीच में अगर कोई तपस्या गणी कर गया तेरे तो, या कोई पुण्य गणा कर गया ये गादी करके, तो तेरा राज छीन कर उसने दे दूंगा, ये तो चौकस रहना। अब तू जाने कौन सी का खिलानी से उसका कौन सा जो है पेच लड़ाना से, युवा थारी कुश्ती तो इंद्र ने और चिंता बढ़ जाके देखो तपस्या करके बात बिगाड़ दी। विश्वामित्र जी तपस्या करें थे, तपस्या भी ना होने दी पूरी, उर्वशी भेजी इंद्र ने, शादी कर ली विश्वामित्र ने, एक लड़की होंदे ने बलिले संभाल ऋषि दी, आगे ऐसी गलती मत करना, छोड़ के जानती रही, फिर रोवे माथा हाथ मार गए। तो पता ये भी ना करने देता, ये नरेंद्र कम से कम ये डले डोए न डोले दे तो कम इनको विराजी कोई ना। तो इस प्रकार महाराज जी कहते हैं यहाँ पर इतिहास पढ़ता सियावन संतों और ऋषियों की, जो साधना आप लोग करते हो इनसे इंसान की तमन्नाएं खत्म नहीं होती, विकार रहित नहीं होते। एक बार कहते हैं पाराशर ऋषि शादी होते ही ऐसे ही सत्संग से प्रेरित होकर और कहता है मैं तो पहले साधना करके आऊंगा जंगल में जाकर और विकारों को खत्म करूंगा। उसकी पत्नी कहती है कि बात एक बात सुनो, आप इतने बुद्धिजीवी होकर भाई क्यों तुम मेरे शादी करो थे, अब शादी बच्चे पैदा करने का समय है, अब तुम जंगल में जा बैठोगे, या कोई बात हुई? कहने लगा नहीं, मैंने जो धारणा कर ली मैं तो मजबूरी में फंस गया, शादी मैंने नहीं करनी चाहिए थी। तो यह तो आपने पहले विचार करना था कि नहीं अब हो गया वो मेरे पर, नहीं मानी तो कहने लगा कि मैं जंगल में तपस्या करूंगा और वहां से बीज शक्ति भेज दूंगा, आपके बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करे, औरत ना मानना तो ठीक, तो कुछ भी करे। चला गया, काफी वर्ष तपस्या की, साधना की, वहां से कव्य को अपनी बीज शक्ति देकर भेज दिया कि रानी को दे गया। रास्ते में कहते हैं उसके ऊपर बात झपट गया कि उसने सोचा कोई मांस का टुकड़ा ले रखा है, और कौवे के मुंह से छूट गया, दरिया ऊपर का जा था, वहां पर कहते एक मछली ने वो बीज शक्ति खा ली, उसके लड़की गर्भ रह गई पेट में, मच्छी से लड़की बन गई, उस पारा सर की लड़की उस मच्छी में पैदा होगी। उधर से ऋषि आ रहा है, अथवा लड़की मछियारे ने मच्छी पकड़ी, मच्छी काटी, उसमें एक सुंदर लड़की निकली, उसका बालक ना थे, मछियारे ने परमात्मा की सौगात समझ के पाल दी, शैनी होगी, और उसको लेकिन उसमें बदबू इतनी बुंडी आवाज से मच्छी में आया करे, जवान लड़की होगी 17-18 साल की। अब वही ऋषि अपनी साधना करके विकार रहित होकर आवश है, देख काल के खेल की इतने कसूते, और वो मछियारे की लड़की थी, यानी जो नौका धीमर की, धीमर होते हैं जो नौका चलाते हैं इधर से उधर यात्रियों को पार करते हैं, धीमर रोटी खाना शुरू करता है, लड़की रोटी लेकर आई थी, इतने में पारासर अपने सब घर को आने के लिए तैयार हो रहा है, उस पटड़ी पर पहुंच जाता है, और ऋषि को देख कर इन्हों पता होता था कि इधर तो भाई वो आया करें जो तोप बना का भक्ति सिद्धि अपनी करके छोटी मोटी, तो कहने लगा मुझे परले पार करके आओ। अब ऋषि वैसे कसूते हों से, जैसे पहले आज सब 30-40 साल पहले पुलिस वाले को ना मानना उसका जो डंडा ठोक दिया करते, तो ये सिद्ध ही इसे होते, सिद्ध पुरुष नोट बेरा था कि ना खड़े हुए तो मन माने किरा के श्राप दे दे, तेरे बड़ा बेटी मैं तो रोटी खान लग गया, तुम आत्मा ने परले पास छोड़ा। अगर अच्छा पिताजी, 15-16-17 साल की लड़की और नौका लेकर ऋषि को बिठाकर चल पड़ी, उस पर उसकी नीच टिकी नीच आत्मा की, बताओ। अब यहां कहते हैं इस काल ने इस जीव की वह द्रुपति कर रखी, अपनी है बेटी और फिर बतेरी आत्मा जोड़े बेचारी ने कि महाराज जी दुनिया देखा है तो शर्म आनी चाहिए, अब आत्मा हो गए। अगले कहते हैं जलू पानी उठाया और ऐसे कर दिया छू मंत्र, सारा धुंध होगी कुछ नहीं दिखता। फिर कहती महाराज जी मेरे भी इसी बुंडी बदबू आती है, कुछ तो सोचो आप ऋषि हो गए। लेकिन महाराज कह या नीच जो वृत्ति उद्भव बढ़ जाती है जीव की, फिर ना देखता आग ताग का पीछा, उसने उसकी वह सुगंध भी बदबू भी खत्म कर दी अपनी सिद्धि थे। अब महाराज कहते हैं देखो भाई, जाहे के बंध से फिर वो लड़की आ जाती है। अब यहां महाराज जी कहते हैं कि ये देखो भाई, वो तपस्या का के काम आया उनके दोने को क्रम पाथे। अब इसलिए कहते हैं ऋषि मुनि सब करें तपस्या, ए भगवान हमें मोक्ष दिए, और तप करवा कर राज दे दिया, फिर 84 में ठोक दिए, 5 तत्व की कैद बना कर ये सबसे बड़ी सोने की बेड़ी ला रखी मारा है, 5 तत्व की कैद बना कर इसके अंदर रोक दिए, और मोह ममता की बेड़ी ला कर जड़ कर्म गले में तोक दिए। कर्म यहाँ पर प्रधान बतावे, क्योंकि कर्म तो मुख्य है भाई, कर्म दंड तो भोगना ही पड़े, कर्म करे बिना काम ना चले। महाराज कहिए कर्म गले में तोक जड़ रखे थारे, किसी भी संत ने देख ले कर्म प्रधान सबाई, सत्यार्थ प्रकाश पेट लेने के कर्म तो प्रधान है यहाँ पे। और महाराज भी कहते हैं ये कर्म थारे गले में ये तोक डाल रखी है, तोक वे अगर किसी भारा भारा बेलू नो भी ना हो तो मेरे ख्याल में 25-25 किलो की इतनी मोटी बेल होया करती, और बेड़ी ला के उन दोनों का कनेक्शन उस तक कर दिया करते, वो ऊपर घटा सकते नीचे नहीं कर सकते। ये कहते हैं इतने बड़े ये कर्म थारे काल ने बांध रखी से, और यहां से भाई मैं छुटवा सकू ना, और कोई ना बचाओ तुम्हारे को। काम क्रोध अहंकार लोभ का ये खूब बना दिया जाल तने। अब देखो अहंकार कितना हमारे अंदर हर जीव में है, और वही मनुष्यों में प्रवृत्ति है, वही पशुओं में है। अब कुत्ता है, दूसरे कुत्ते ने देखते और पुकड़ पर पुछड़ कर लेगा और उसने ठाडा दिखा ना उछड़ दाब का वंकार न गुस्सा ढूंढ ना पानता, एक किल्ला जाकर डटे है चारों चौकड़ी ठोकता हुआ। ये मारी गई लामड़ एक बार कहते हैं, पर यो बंदी छोड़ का आगे को ना डटा यू काल न्यू बात। जैसे जैसे अब कबीर साहब के सामने इस काल की किस स्थिति है, वैसे तो बहुत तगड़ा है लेकिन बंदी छोड़ का आगे कोई ना क्योंकर कोई ना। कहते एक बगदी ने बोला जी मारे गांव में एक बार एक हाथी वाले आ गए हैं बाबे से आकर, हाथी को लाते हैं और मांग मूंग कर ले जाते हैं। उन्होंने दो पैर सी का समय था, हाथी को जोड़ में छोड़ दिया नान नून खातिर और वो जोड़ खोद रखा था, ताजा खोजा था, लंबे लंबे गरे गरे जूल बना रखे थे। वो हाथी सारा इसका मैं मारा फरनो और लोट बस्ती और पूरा डूब रहा उसमें और सूंड ने भी बस मड़ा सा दूर से दिखो सूंड भी उसका इतना कर। और मस्ती इतने उस गांव का जोटा आ गया और जोटा था गणा तगड़ा, वो किसी ने पढ़ नहीं दिया करता, अपनी सीमा डी पाक रहा था। उसने सोची उस सर सर दिखा उसने हाथी का, उन्हें सोची इस जोटे की मत क्यों कर पड़गी तेरे जोड़ माउन की, ये जोडक्शन बांट रहा की सबने कुत्ते ना अपनी बांट रहा की राजा ना अपनी बांट रहा की और जोटे ना अपनी। तो क्या हुआ अब जोटा था जी पक्का नो बोला नो करके चला कहते अपनी पूरी शक्ति के साथ बेग से जोड़ कमार नो जानो ठोक दो ठाक है। हाथी की एक नजर थी उसका ऊपर कान दे इस नवरही ने, हाथी सारा बार निकलाया एकदम उस झूलते बाहर आ गया और पानी पर रहा सूंडन में उसके मुंह पर पहना तो पानी मारा फुर वो जोटेगा और जब दिखा उन्होंने इतना बड़ा पहाड़ सा उठा उन्होंने तो भाई पाछा फिड़क है उसी स्पीड से चौगनी स्पीड वापस कर दी। अरे बोला मारे सीम वहां से 4 किलोमीटर पड़ा से सीम पार करके डटा पाछा फिर गया देखा को सब कह रहे जोटा ऐसा करा भाज क्यों कर रहा है कि पाछा दिखता भी कौन है। तो भाई मारा इतना व्यवस्था है सबका और उस काल का काल भगवान कबीर साहब का आगे न्यू बाजे जैसे हाथी का आगे जोटा बाजे पर यह हमने बेरा को नहीं हम कबीर ने नो को ना कबीर के से जो कुछ है भाई ऐसे पर मानोगे वो जिसका पेटा भर जाएगा जो इसकी समर्थता से परिचित हो जाएंगे। एक माई का पति मरिया वह दुख में माथा फोड़े थी और मेरे बेटे की तो खैर राखिए इन्हों के आकर आज तेरे तो जोड़े थी इन्हों के आकर सभी हे भगवान बालक की जिंदगी दे चलो वो तो जो होनी तो होगी। अब यहाँ विचार खत्म हो गए हमारे कि जिसने यू बाप मार दिया बेटे इनको कुर्बख्श देगा, आप पे सबर कर ले हम अपनी बुद्धि अनुसार सुनी सुनाई बातों पे उस बच्चे का केस समाधान कर दिया जो बाप का ना था, इसके ऊपर हमने के डाल डा दी कि जो इसकी रक्षा करे इसकी रक्षा बना उन धूल में लटता चाहो वैसे पूरा दी जाओ पर एक सेकंड का भरोसा कोई नहीं। और भाई फिर कहें उस दुखिया का एक का बेटा बेटे पे जन तोड़े थी अपने पूत की खैर की खातर तेरे देई दाम न दौड़े थी वरना कित कित मरना मांडा अपने बच्चे खातर तेरा कित कित बाल तरवावे बाल की तरवावे बाल तरवाण ते के सारा लागे कोई विचार करे जो बेचारी खत्म हो गए मारे डर इतने गए हम गुड़गामे वाली पे कोई अपने इष्ट धाम पे जो उन्हें पूजा स्थल मान रखा कोई श्याम जी पे कोई हरिदास जी पे कोई गरीबदास जी पे या अपने बोला बाल तरवा का कोई बेरी वाली पे। महाराज कहते हैं उन बालों का वहां तरवाण ते क्या लाभ और हानि है बताऊं थारे ते। अब बाल तरवा कहते हो या 5 रुपया में तारा उड़ा 20 रुपया में तारेगा और उन बालों ने आपके सामने तो धर लेगा कट्टे में गा लेगा और 4 बाल तुम ना दे देगा मंदिर में चढ़ाएगी कि मंदिर वाले बालों ने खा के मरेंगे सांझ ने खिड़का कट्ठे उन्हें करोड़िया बटोकेंगे ठाके और तुम राजी हो गए बाल चढ़ाए दिए इस तरह से अपने आड़े कटवा के घेर दो कि बदा बगाओ ठाके मुखा मुखा इतनी दूर जाओ वो बहम इसने कौन काट दे इसने काटे मंदी छोड़े मतलब बाल चढ़ा दिया उन्हें फ्रेम हो गए इतना बताए बाल बड़े बड़े बैंक में जमा करा दिए सही बताऊ एक बार भी घेस ले हाई बार नया तार करना पड़े इतना देर जीवन के ऊपर काल देव ने कर रखा। और दूसरी बात फिर नोडर लागे कसे ऊ चिंगर जा चिंगर नाला बिटर गणा लागे हाय मारी तब बता सत्यम छुटवा से उस सत्यम का कर क्या रहे हमने देवता और बड़ों में बैठे तब छह महीना में अपनी खीरा पर बना के खा लेने का देवता का सत्यम की बनावा सा सत्यम का तुम पहुंची क्यों करवा या भी विचार कर लो। अच्छा फिर छठे महीने उसके तो खेत ख्यात में बना रहे हो अपना छोटा मोटा या इष्ट धाम पर जाते हो वहां अपना चढ़ाते हो को मंदिर में चढ़ाओगे पुजारी पड़ेगा सुल्फे पाड़े दारू पीवे गणा फालतू पैसा और कित प्रयोग करे हो नियम मारे से वो तुम सीधे नरक में खेत में चढ़ाकाओगे उड़ा कुत्ते बाट देखते पावे और वहां पर जो है आप तो चढ़ाकर उतरो भी कोई ना इतने चढ़ लो उस माता पे उड़ा छक्के फिर उसका ऊपर मुते उसके सर पे और मारी घिघी बिंदरी महाराज कह जैस माता में सी शक्ति है कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ देती है जैसी बड़ी आया माता शक्तिशाली है ये थारा पितर खेत आला तो कुत्ते की टांग तोड़ा जो माना आव को कांता फिर हम भी पूजा सारे जाके उसने है तेरा बुलाया। तो इन बातों का विचार करोगे जो बात बनेगी क्योंकि बुद्धिजीवी तो हो ऐसी बात नहीं पढ़े लिखे बालक सब बहन भाई तकरीबन जान लागे इन शास्त्रों को भी पढ़ लो और विचार भी कर लो इनका ऊपर अरुण पूछते पूछते वहां दुर्गति हो रही वो संकट न्यो के न्यो और हम बताने लाग रहे कि शरण माने के बाद वो संकट मिट गए जो बालाजी फेल हो गए और ऑल इंडिया फेल होगी मिलिट्री हॉस्पिटल फेल हो गए हरिशबंदी छोड़ की कृपा तुम स्वस्थ हो गए। अपने पूत के खैर की ताही तेरे देई धाम को दौड़े थी उसके आगे वो भी खा लिया और कति करी ना टालता नहीं बता भाई इस तरह बुंडा जुलम और के करेगा क्या हो सकता है पहले पति मरे विधवा होगी और फिर बेटा मर गया अब वह माई क्यों कर सब्र करेगी अपना विचार करके देखो अपनी छाती पादरो जब बेरा पट इस काल के जाल का ये तो हमने सुख लगा है कोई बात ना उसका तो हो गया होगा अपन के समाधान कर रखा जो अपनी गल्ला बीतेगी कहानी इसका समाधान एक का बतावे है कि संत शरण में आ जा कबीर भगवान की में इस कबीर पंथ में भी बहुत ज्यादा काल के दूत इकट्ठे हो गए। कबीर साहब को कहते हैं ये तो मां का पैदा हुआ था ये तो जुल्हा था कवि थे बढ़िया बात बताई वही शास्त्र में लिख रखी वही इसने बताई यहां तक उनकी बुद्धि स्थिर है लोगों की। कबीर पंथी महात्मा ये कहते हैं कि मां बिना तो पैदा हो नहीं सकता वो कबीर पंथी नहीं वो तो काल पंथी से वो कबीर साहब से परिचित नहीं उनकी शक्तियों के और उनकी उत्पत्ति से उनकी वो सृष्टि के रचने वाले अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान से। एक तरफ तो कंस बना दिया और बनाया कृष्ण भगवान तो ही निरंजन ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने को और ये बना लिए चारों खान तो ही चार खान कौन कौन सी हैं अंडरज जेरज स्वेतज और उद्बुद्ध ये चार प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है और जैसे कोई अंडे में कोई जेर से जैसे पशु भैंस गाय बैल मनुष्य ये जेर से उत्पन्न होती है इनको जेरज कहते हैं जेर से उत्पन्न होने वाले अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले स्वेतज जो अपने आप जैसे सुरसी बन गई डोरा बन गया कीड़े पड़ गए गुल्लर में आप गुल्लर के फल ना देखे उसमें नूरे पंख जीव पाकर फर्र नहीं उड़ जाते हैं और उद्बुद्ध ये चार प्रकार के प्राणी होते हैं जो कि अब जैसे खेत को खूब बांधे हैं और कति बहुत ज्यादा सूखी मिट्टी हो जाती है बारिश होते इसमें गरना कितने उग जाते हैं उद्बुद्ध होते हैं जैसे अपने आप पैदा हो गए इस प्रकार ये चार प्रकार से उत्पत्ति जिसमें जड़ वृक्ष भी आगे पौधे पक्षी भी आगे पशु भी जंगली जानवर ये सारे के सारे। तो यहां कहते हैं कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने को बना दी चारों खान तू ही सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई ओछी उपासना सारी ये छुटगी ये बुरे कर्मा तारण हुई ओछी उपासना ये तो 84 जान की थी माता दोकना व्रत रखना ओई कमोई बनाना मनाना करवा चौथ का व्रत रखना ये सब 84 का धंधा साधन है 84 तो छूट नहीं है पर ये एकदम हमारी बहन भाइयों की खटका है नुका करवा चौथ ने भी ना मानन देते है। ये करवा चौथ की डाल की तड़ा रखी है, कौन से शास्त्र में लिख रखी है या बताते दो, मैं भी पढ़ लू उसने और हम भी आगे गा दें गुण उसके, या किसी का इष्ट करवा चौथे एक आराम कर करवा के दिखा दो किसी का दुख दुखी का हम मान जाएंगे, एक कद बता दो इस तलाब हो गया हो। वो तो देखा देखी से शास्त्रों का तो ज्ञान रहा ना, मैं भी देखा देखी हनुमान पूजन लग गया था, हनुमान चालीसा पढ़न लग गया, मंगलवार का व्रत शुरू कर दिया, अपने नफराम हो गया 25 साल किया, और ये 6 महीना में वो साधना उसे कई हजार गुना ज्यादा उपलब्धि होगी जो विधिवत की हमने, इसलिए डंडोरा पीटू हूं भाई वो साधना गलत थी अपनी, अपने मेरे भी ये चौंत लाग रही थी और यह आपके लाग रही से, इसलिए इसको हटाने की खातर 100 प्रमाण देने पड़े हैं एक ही पॉइंट के ऊपर। जब जाके आप बुद्धि स्वीकार करती है कि शायद ही शायद या गलत हो, फिर तो शायद पावा है एक दो सुनकर तो, और जब इसमें लीन हो जाते हैं और फिर वो अनहोनी होती है जो सुना करते इस कबीर भगवान की कृपा से होती है वो चीजें, हम सुना करते और ये हो गया था कि ये तो कदे पहले होती होंगी, ईब कोई ना होती, ये सतयुग सतयुग में होया करते, जो सुख भाई फलाना न्यू कर दिया उसका लाभ होगा, उसका न्यू हो गया है वो, तो ये आज भी होती है, पर वो पद्धति हमारी जो तो भगवान की पद्धति थी वो मार्ग था वो भिन्न हो गया, गलत हो गया, ठीक हो नहीं रहा, इसलिए ये हमें जची नहीं, हमें लाभ नहीं हो रहे। सतगुरु जी की मेहर हुई तब हमने तेरी जान हुई निरंजन की, कबीर भगवान ना आकर हमारा यो अंधेरा हटाया, ओछी उपासना सारी ये छुट गई, इब तक वो व्रत राखन ने रूह भी ना करती, हनुमान चालीसा 30 साल ऐसा लगता है जैसे पहली का कैदा होया करे और बीए के बच्चे को, इस प्रकार कहते हैं ओछी उपासना सारी ये छुट गई, बुरे कर्मा तय आने हुई, बीड़ी शराब मांस तमाखू नो कई बिन का निरूह ना बनती, ये तो दुश्मन दिखने लग गए 84 में ले जान के पक्के साथी हो गए, दिखे भी है गधे बनावा फिर कुत्ते कुतिया बन का गोबर खावा, इसे जुलम ने क्यों करा भाई हम, तो ये ओछी उपासना और बुरे सारी ये छुटगी बुरे कर्मों से आन हुई, आन माने परहेज हो गया व्रत हो गया। अब कहते हैं ना मन तो व्रत रख रखा साथ, क्या का व्रत है, अगरोटी को ना खाऊं पानी पानी पीऊंगा, ये व्रत क्या हुआ भाई, रोटियां गिरना दुश्मनी क्यों बनाई, व्रत कर बीड़ी का शराब का सुल्फे का मांस का, यो तो व्रत बढ़िया भी लग गया, और शरीर ने रोटियां बिना काम चला नहीं, रिश की तुम व्रत रखो बता, और जिसकी आवश्यकता नहीं उसने इसके अंदर प्रवेश करो, ओका बीड़ी तम्बाकू शराब को और मांस को, उल्टे व्रत शुरू कर रहे हो, खाना थोड़ा खाओ, प्रथम अंदर संयम रख, योग युग सब सतगुरु वाक्य, अन्न जल यानी अपना इसने गणा ना खावे, थोड़ा खावे, ज्यादा खाने से आलस बढ़े जब आई आवे, और थोड़ा खावे संयम यू ना के ये व्रत कर ले, भाई 4-5-6 रोट ना ठोके, अपना 2-3 नाम काम चला ले, 2-3 बार खा ले पर थोड़ा थोड़ा खा ले, तो उसका आलस नहीं बनता जीव को, ये तो है व्रत, नुका तो सांध में सिर में दर्द हो जाता, मैं भी रख्या करता शर्मा दर्द हो जाता फिर लाल जिन की गोली खानी पड़ती, रखना फिर भी अगली बार फिर रखेंगे क्यों, वो तो हमने ज्ञान नहीं इतना था, इस प्रकार इस कालदेव की पोल को कबीर प्रसाद बिना कोई नहीं खोल सकता, मुंह बिना पाटे इंसान का इतना डर लग गए काल ते, यहां कहते हैं जीवों को दिखा कर लीला अपनी महिमा गनी, यही जान जीव को बांध कर यह है आशा रख सक देनी, कबीर साहब ने बताया कि यह तुम्हारे साथ एक धोखा और करे है काल बली, कैसे, एक तरफ तो कंस बनाया रावण बना दिया, दूसरी तरफ राम और कृष्ण जी को प्रेरित कर दिया विष्णु जी को इन मार का, अब उनको मार देने से वो इतना बड़े राक्षसों को, तो हमने इनको मान लिया ये हमारे भगवान थे हमारे रक्षक है, लेकिन ये भी रख सको ना बेचारे, एक समय बात है कि ये भी धोखा करे है काल कि इन न भगवान मान्य रहे आगे का बेरा ना पट्टा फिर ठग लो इन स्वर्ग ताई बेच दो और स्वर्ग में खा के पूंजी 84 में ठोक दो, ये वहां पर गठड़ी फिर अपने पुन में मारी वह गठड़ी वह गांठ पुनो की जो थी पंडोकड़ी वह फिर वहां छीन ली और खाली करके पल्ला झाड़ के चल बेटा अब कर्म हो गया अपने 84 में। एक समय की बात है एक भक्त ये कथा सुने था, न्यू बोला जी 100 की सुनो की नो बात सर। कैसे? न्यू बोला एक समय की बात है कि हमारा एक नाटक मंडली आई हुई थी गांव में, और उन्होंने क्या दिखाया उसमें कि एक सेठ जावा था और उस पोटली ही बना रखी, पहला गठड़ी बनाकर उसमें चूरमा भी बांध लिया करते, पैदल चलते थे और पैसे भी उस समय रखा अपने हैं। तो उसने क्या, व्यापारी लोग था, कुछ तो गोज मंगा लिए और कुछ होते थे चांदी के रुपये, वो उस गठड़ी में बांध कर कपड़े कुपड़ा का बहाना सा लको लगा के उस पर धर ली। उनको साज लाएगी ठगों को कि भाई सेठ से और माया जरूर से इसके पास, पर यू हमने देख क्यों करे। उन्होंने बोला इसी पोटली बनाकर उन तीन चार ठगा ने, और सेठ ते एक ने बोले तू जाके सेठ गेला हाथी पाई कर ले और हम तेरे दो चार थप्पड़ मार दे तू गोली हो जाइये। यू हमने सोच लेगा कि तेरे खास साथी हो गए, ये ना होते था तेरी पोटली गई थी। एक ने जाके आगे बाजरा में कहा के और सेठ ने वो पोटली ला गया खेचर, पोटली छोड़ा था सेठ करड़ा हो गया। नो भाई एक ने तो देखो ना कहीं तो डर लाग भी सकता, पर नो चपट गया करड़ा होगा और लात मारे उसके, इतने वो भी पहुंच गए जो उसके साथी थे दूसरे ठग। नो बोला सेठ घबराइए ना आगे, हम भी सेठ ने देखा, हाँ ये देखेंगे तेने देखा हम कही हो गए सर। वो थोड़ के बाज गया, वो तो उनका साथी था, वो तो उन आकर उसका बाज बूझ के बाज एक दो डला मार दिया, वो डांक ठोक गया। भाई तुम बड़ी अच्छी, सेठ कहने लगा बड़ी अच्छी बात करी तुम आगे ना, तो बात बिगड़ गई थी, मेरा तो इसमें था सारा सौदा, वो ना बता भी दिया उनताई अखी इसमें तो गना सौदा था मेरा, हजारों रुपये ले रहा था मतलब व्यापार करने जाना से। ओहो ले भाई चोखा आगे चाली घबराइए ना सेठ, हम तेरी साथ सा कि जागा कि वहां तक, और उस तो एक गांव पहले का नाम ले दिया, हम भी वहां तक जाएंगे एक गांव आगे का। अगले चलो मेरा पीछा छुटा, चार साथी तीन चार साथी हो गए निश्चिंत, आगे जाके ने बोले भाई चोरमा खा लिया अग आ जा, कुआ देख के बैठ गए। अब पैदल चल रहा था सब नबेरा है, कोई आदमी थकेगा फिर बाथरूम भी जाएगा पेशाब भी करेगा। अब सेठ जी दर के पोटली ने उड़े और दूर सी जाके शर्म का मारा भाई बाथरूम करने चला गया, उन पोटली बदल ली वह सेठ वाली नौ दर दी, वह कांकर घाल रहे थे वो खागड़े, वह कांकर वाली तो उसका आगे दे दी और वह रुपये वाली अपने दर ली और वह आप अपनी पोटली खा के चल चल पड़े। वो चुरमा चुरमा उसमें रोटी राटी खा ली थी, फिर बाद में बाथरूम गया था, वो बांध गया अपनी रोटी। अब वो ठाठा चल पड़े, वो बोले सेठ जी हम तो भाई थोड़ा डटका आवेंगे तू चाल इतने अच्छा, उन्होंने सोची चल ले भाई भी इनका चमाट होगी होगी। आगे जाके सेठ ग्राम पहुंचा और ने कह देख भगवान आज तब इसने पूछा ना, भगवान ने चार फरिश्ते भेज दिए ना तो बात बिगड़ गई थी। क्या हो गया था कि एक ठग ने एक चोर था वो चक्का पोटली खोसे था, बोला ठीक से सेठानी भीतर खोली वो कांकर निकली तुम उसमें, बोले इसमें ये के बांध रखे आपने अके अग देखता है रतरा भला हो, वो तो ठग था कोई ना पर वो काट गए रोग मेरा। अब विचार आया उसने तो यहाँ कबीर साहब की ये कहते हैं ये एक दोहा कैसा है कि जीवों को दिखलाकर लीला अपनी महिमा गणी और जीव जाने यही जान जीवों को बांध के आशा यही हमारा रक्षक दणी कि ये हमारे भगवान से ये हमारी खूब मौज मचाओगे। नोना बेरासली गिठड़ी ने ये स्वर्ग में खोसेंगे तेरी ने, इन पनों को वहां छिनक लेंगे और खाली मुंह लटकाकर नरक में नरक के बाद 84 के गेड़े में चौके से रक्षक कला दिखा के या रक्षक कला दिखाई उन ठगाने कि हम तेरे रक्षक से भाई और अनंत अंत में काल भक्षण करे और पीछे जीव पछतावा जब जाके काल के मुंह पड़े। तो सेठ गरजा कर रोया अको तरह बोला उन बेकूफों को बता भी दिया मैंने तो मैं ले रहा हूं पैसे जन्ना बताऊं तो खेरा टाल भी हो जाओ। तो ये कहानी कबीर साहब ऐसे ढंग से हमें बताता है कि भाई देखो आगे थारी मौत से सच्चाई मानो तुम तुम्हारी मर्जी ना मानो आपकी इच्छा, पर जो का तो कति साफ इतिहास है। 68 तीर्थ बर्मा था प्या अक्रम कर्म पुन और पापा, बर्मा जी ने 68 तीर्थ बना रखे। बर्मा जी ने कैसे, उनके वंशज ऋषियों ने साधना की उन तीर्थों पे, साधना करके तो किसी ने तपस्या करी किसी ने कोई जाप किया इस भगवान निरंजन का, इनमें भी शक्तियां हैं सिद्धियां हैं ये भी अपने यहाँ के पूर्ण सुख दे सकते हैं जितने ये दे सके, लेकिन जो असली संकट है 84 का, इसको ये मिटा नहीं सकते। तो तब तीर्थ क्या होता है, जैसे एक ऋषि ने एक तालाब का आसरा लेकर वहां पर अपना तपस्या करी, कोई साधना की, जितने भी काल निरंजन का कोई जाप किया, तो वहां अपने करके तपस्या वो तो चला गया। जैसे कल बताया था कि मोम दस्ते में किसी ने सामग्री कूटी और मोम दस्ता उनका वहां छोड़ दिया। मोम दस्ते में तो मैं कावा से प्रभा वस्तु को ना, वो तो ले गया अपनी गठड़ी बांध गया उस सामग्री की जो उसने मेहनत करी थी, कुटा छेती करी थी। अब इसी प्रकार उन तीर्थों के ऊपर ऋषियों ने जो साधनाएं की थी उनकी मैक मैक रह रही थी, वो वस्तु अपने वो धन न ले गए, आपने कुछ नहीं, वहां जाओगे एक बार शांति सी होगी, फिर पाछा कुछ को ना। भाई गर्मा तो जब होगी, जब सामग्री ग्रह होगी रोज अपना, तो वो राम नाम की कमाई हम देते हैं, आप ग्रह सामग्री कूटो अपने घर पे रखो। तो ये 68 तीर्थ ब्रह्मा था प्या उसके संतों ने बना दिया। अच्छा सत साय बता रहे हैं सतगुरु महाराज कबीर साहब के आधार पर जो भी उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया उन्हीं के आधार पर आपको हम बता रहे हैं। 68 तीर्थ ब्रह्मा थाप्या 68 तीर्थ ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, और तीर्थ पर जाने से जीव ने लाभ क्या हो हानि क्या हो, जैसे आप तीर्थ स्थल पर जाते हो तो रास्ते में ना जाने कितने जीवों को हम उस स्थल पर पहुंचने से पहले संहार कर देते हैं, मार देते हैं। पुण्य तो एक होता है और पापों की गठड़ी बंदगी, अर्थात पुण्य थोड़े पाप घने बनते हैं। मान लीजिए तीर्थ स्थल पर जाने का एक पुण्य हुआ और पाप बन गए करोड़ों, क्योंकि जो जीव हमने रास्ते में मारे वो बेचारे अपने बच्चों के लिए घर से निकले थे, कोई चुगा लेने के लिए, कीड़ी मकोड़े चीटियां जो हैं, और हम अपने स्वार्थ की खातिर चले, अपने पुनों के लालच में हमने उनको रास्ते में मार दिया और ये हमें उसका पाप लग गया। इस प्रकार कबीर साहब ये बताना चाहते हैं कि जो पुण्य तुम कर रहे हो उनके साथ साथ पाप भी बन रहे हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं करत हैं पुण्य होत हैं पापम, करत हैं पुण्य होत हैं पापम, आप करते रहे हो पुण्य और हो रहे हैं पाप, और आप कहते हो कि हम किसी की आत्मा तो दुखाते को ना, और हम कोई पाप नहीं कर रहे, कोई जीव हिंसा नहीं करते, कार्तिक माग पुन कह दीना यम की बाजी कोई बिरला चीना, नो कहे कार्तिक में जो और माह में कार्तिक के अंदर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान बताते हैं बहुत पवित्र होता है, कि गंगा में स्नान करते हैं उस दिन उनकी मुक्ति हो जाती है, पाप कट जाते हैं। गरीबदास महाराज कबीर साहब यही प्रमाणित करना चाहते हैं, ये गुमराह कर रखे हो, आपको गलत मार्ग बता दिया। गंगा के पानी में कार्तिक की पूर्णिमा सीन के में फर्क पड़ जाता है, आप उसको दो दिन पहले जल निकाल कर रख लो और फिर कार्तिक वाले दिन निकाल कर रख लो और टेस्ट कराओ लेबोरेटरी से, जब उस दिन कोई फर्क पड़ गया होता मान लेंगे पड़वासी वाला जनता गणा बढ़िया गंगा जल हो जाता है, इसका मतलब फिर बाकी जनता धोखा हमारे साथ, वह गंगा भी वह दोगली होगी, दो डाल की काम करे। एक कहते शराब भी शराब पी रहा था और आगे से एक मेरे जैसा बोधा सा आ गया, उसको गालियां मंड गया, उसने मेरे जैसे ने सोचा भाई शराबी तो गाली दिया करो और कौन से फूल बरसाया करे, वो तो चल पड़ा उसके पाछे न हो रिया, चल दिखूंगा तो और कहीं गाली देगा। आगे ताके मांगे राम के साथ होगा लेके, उसने कहा नमस्ते चौधरी साहब, ओ शराबी, अब तो मेरे कैसा बोलता हाँ कह रहे शराबी दो डाल की पी रहा खागड़ तू, शराबी दो डाल की पी रहा है, मन तो गाली दे और इसने तो नमस्ते करे, तो फिर तो गंगा भी दो डाल की होगी भाई। बाकी दिना मतवा कुछ नहीं करती और भाई पणवासी नान तो मौत मचा दे। अब भाई इसने किस प्रकार अब कैसे इसको हम इस बात से इन भोली भाली आत्माओं को हटावे। अब ट्राई सभी कर रहे हैं। अब देखो विचार की बात से भाई, ब्रह्मा जी ना आप पूजो, चलो विष्णु जी ना आप पूजो, ब्रह्मा की पूजा नहीं करते क्यों? वो किसे जोगा सहे को ना काम तक ईमानदार नहीं मारे। अब होम मिनिस्टर की गणी पूजा करा, अरे को करा गान मंत्री बना रहा क्या पर पर्यटन मंत्री आने था, उसने कति ना पूजा मारी, ऐसे स्वभाव बन गया, इसलिए उसकी पूजा करें क्या? हमारा आम काम में तो होम मिनिस्टर ज्यादा आवे, तो विष्णु जी की पूजा करें और शिव जी की करें, क्यों गट दे। अच्छा तीसरा जो है, फिर अपने घर में जो बना रखे व्रत भी करें, जाटी भी पूजा, पीपल भी, तुलसा तुलसा भी, और साथ में और के पूजा में मंदिर में पानी गिर जावा चढ़ावा अपना जल पवित्र ढंग से, जैसा भी हमने साधना बता रखी, आठम छठ सातम ने खीर भी बनावा जो विधिवत चल रही है द्वादशी को। अच्छा फिर उसके बाद कोई कष्ट आवे तो फिर सैना ने ढूंढा पत्रे दिखावा, फिर जो आप कर रहे थे उन साधना ने केक रहा आपका, या कद विचार किया आपने? आप कबीर साहब कहते हैं कि ये तुम तारी गेला नो बन रही है, कैसे? अब काटड़ू बच्चा जो गऊ का बच्चा होता है या भैंस का बच्चा होता है, जब तक उसका थन नहीं खावेगा ना, थन नहीं मिलेगा, इतने पूछ डल रहे कोई ना, नकली लाओगा थोड़ी देर, कई बार तो माँ के आगे गर्दन में खालड़ा सा लटकिया करे, उसने मुंह में दे लिया करे, और थोड़ी आड़ते न्यू एक मुंडा करड़ा हो गया, थोड़ी देर में छोड़ दे उसने, कि उसमें सहे कुछ नहीं, फिर कान ठा जा कान में चूसे जागा, अग सोचे दूध होगा, फिर मुंडा न्यू करड़ा हो गया, फिर उसमें कुछ नहीं पाता, उसको भी त्याग देता है। और भाई फिर मुंह में उंगली दे लिया करे उस बच्चे का धनी, थोड़ी देर उस उंगली में भी खूब चाबा वो, फिर उसने भी छोड़ देता है, और थन छाए पास चूस कर छोड़ दिया उसने। इसी प्रकार जब हमने वो सही स्थान मिल जाएगा भक्ति का, और छोड़ देगा जब अपनी मर्जी, तो पेट भर जाएगा, छोड़ता नहीं, फिर नीत रहेगी, उसको पता तो है वहां से हमारी जो ना ये पूर्ति होती है। तो इस प्रकार आप जो साधना कर रहे हो, कभी गंगा में जाते हो और कहीं तीर्थों पर, और कितने फिर और घनी दूर जाओ सो, ये सिर्फ आपके उस तुम घूमते रहे हो उस परमात्मा के चौगर दे गए, पर भाई वो चीज नहीं ठहली जिस तरह से वो आपको लाभ देता है, वो देता है संत के माध्यम से सार शब्द और सतनाम की कमाई करते हैं, फिर आपको वो वस्तु मिलेगी, फिर आप सेटिस्फाई हो जाओगे, आप बिल्कुल आराम से संतुष्ट होकर बैठ जाओगे। तीर्थ धाम का बाद महात्म, तीर्थ धाम का बांद महात्म, जावे ना भरम ना चिन्ह आत्म, प्रथम तो भ्रम नहीं मिट रहे आपके, और आत्म कल्याण का था मतलब है कोई ना इस मार्ग पे। पाप पुण्य में सभी फंदावा, ये विद जीव सब है उलझावा, सत शब्द बिन कोई बच्चे नाही, और भाई सार शब्द बिन यम मुख जाही। ओए होए साफ कर दिया कबीर साहब ने कि सत शब्द यानी सत नाम बिना कोई नहीं बचे, और सार शब्द बिन यम मुख जाही, इस काल के मुंह में जाओगे चाहे योगी बनो और चाहे भाई साधक बने रहो, चाहे चारों वेदों के ज्ञाता बन जाओ, पर भाई ना जन्म मरण मिटे ना 84 छूटे। अब इस बंदी छोड़ बिना ये पाप ना कौन काट दे भाई, ये पूर्ण परमात्मा है अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान से। लोभ लाभ जीव लाग गए जाई, आशा बांध काल दरखाई, लोभ जीव लाग गए ध्याई, आशा बांध काल दरखाई, लाख जीव यमनित प्रति खाई, और महा अपर बल काल कसाई। अब बंदी छोड़ इसको, काल को कसाई की संज्ञा दे रहे हैं। लाख जीव यम, यम माने काल, नित प्रति खाई और महा अपर बल काल कसाई, तपत शिला निस्दिन तांजर ही और ता पर जीव ता पर ले जीवों को धर ही। तपत शिला निस्दिन दिन रात वहां पर निरंजन के लोक में जलती रहती है और उनके ऊपर उन जीवों को दर कर फूक कर भून कर खाता है। तपत शिला निस्दिन तांजर ही ता पर ले जीवों को धर ही, ता पीछे योनि भरमावे और या विद नाना कष्ट दिखावे। उसके पाछे फिर योनि में भी भरमावे तुम्हें, यानी 84 लाख योनियों के चार संकट पड़े। चल हम इस काल भगवान से ये प्रार्थना करें, हम इतने डीटता हुए लिए दुखा न सहन जोगे, भाई हमने तुम मारा मत ना बस। और या फिर इतनी कर दे भाई हम बुढ़े होकर बेसिक मर जावा, इतने तो बड़का ठीक ठाक हमने रह लेने दे, पर इतनी भी छुट्टी ना जनता, फिर भी हम कोई ना इतने डीट हो लिए इन संकटों ने जेल जा लेंगे, चाहे सांप लड़ो चाहे कुछ भी हो जाओ, लेकिन इतना भी यहाँ पर इतनी भी सुख को ना, और फिर भी जान क्या यहाँ से रुचि कति नहीं। क्यों जो सुखी हैं जिनका दुख को ना, वो इन्हें सोचे है इनका तो क्या होगा, पद मौज मारा ऐसा ठीक बहुत बात चाल ठीक काम चल रहा है। यहाँ महाराज कहते हैं आशा बांध काल दरखाई, लोभ लाभ जीव लागे ध्याई, आशा बांध और काल दरखाई। सबको आशा बना रखी है, बेटे बड़े होंगे ब्याहेंगे और भाई फिर मौज हो जाएगी, पोते होंगे उन्हें खिला करेंगे, कंधे बिठा कर घुमावेंगे, और भाई जो बीच में चले जाने लाग रहे रोजाना 1 लाख की गाणी गल है, क्या उनकी आशा थी को ना? ये विचार करोगे जो भक्ति करना रुचि बनेगी आपकी। और कोई ने सोचा हमने का काम छोड़ दो, बालक छोड़ दो, अब छोड़ के दिखाओ एक दिन, हम भी नहीं छोड़ सकते आप ना के कहे, हम नहीं कहते छोड़ो, अपने बच्चा ने इस लाइन पर लाओ, भक्ति करवाओ, उनकी बुराइयां छुटवाओ, सतमार्ग पर लाओ और फिर उनके अंदर रहकर अपनी भक्ति करो, उनको भी साथ में बैठाओ और अपनी आरती करवाओ, हम ये कहते ताकि आपके साथ साथ वो भी यहां से मुक्त हो जाए। और जब तक हम इस मार्ग को नहीं अपनाएंगे, सतगुरु महाराज वाले को इतना बात बना कोई ना। तपत शिला निस्दिन तांजर ही ता पीछे योनि भरमावे या विदना ना कष्ट दिखावे। इस प्रकार ना बेरा कितने प्रकार के संकट में जीवन डालकर और ये दुरुक्ति करता है। धर्मदास ने बोला महाराज जी, क्योंकि धर्मदास भी पक्का नाड़ी था और पूरी साधना भगवान विष्णु और शिव की क्रिया करता था, जैसे हम सभी कर रहे हैं उनका के दोष बेचारे का, जैसा भी हमने मार्गदर्शन हुआ है उसी के आधार पर हम लगे हुए। एक दिन लाइट चली गई, जनरेटर चल रहा है। इस प्रकार कबीर साहब ने आकर दो धर्मदास ने जब कबीर साहब की पद्धति को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो पहले भी स्वयं गीता जी का बहुत तगड़ा उपासक था, हम भी गीता जी पढ़ा करते, मैं छोटी सी गीता जी एक सरलार्थ की हुई छोटे छोटे अक्षरों में अपने साथ रखता था जब पढ़ा करता, और उसमें पढ़ते थे देखा करते बड़े ध्यान से और पढ़ पढ़कर अच्छा की बात है कि एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े सेठ थे और बांधवगढ़ में रहा करते थे। बांधवगढ़ के रहने वाले उनको धनी धर्मदास जी के नाम से जाना जाता है, इतने सेठ बताते हैं, उनको इतना पैसा था उनके माता पिता के पास कि बांधवगढ़ नरेश को कभी किसी कारण से धन की आवश्यकता होती तो धर्मदास के माता पिता और स्वयं धर्मदास से वो वित्तीय सहायता लिया करते थे। ये राजा को बिना ब्याज के पैसा देते थे और कुछ वैसे भी दे दिया करती थी। इतना पैसा